ब्रेन साइज श्रिंक हो जाता है स्मोकर्स में, इवन आफ्टर गिविंग अप स्मोकिंग.
कम सोने से ब्रेन हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है?
लैक ऑफ स्लीप इज मे बी वर्स देन अल्कोहल बिकॉज इट अफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग, रिफ्लेक्सेस, सब कुछ.
हाउ बैड इज अल्कोहल?
वेरी बैड. इट्स अ टॉक्सिन टू द नर्व्स.
आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो ज्यादा खराब होते हैं?
लाइक शॉट डेफिनेटली द वर्स्ट. सेकेंड वुड बी द हार्ड लिकर्स जैसे कि विस्की, वोडका.
व्हाट आर द ब्रेन फूड्स टू इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ?
सो द कलर्ड फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में कोई हेल्थी ब्रेन फूड्स नहीं है.
यंग लोग कैसे अपनी स्पाइन खराब कर रहे हैं?
हम ज्यादातर एक्टिव नहीं रहते हैं, ज्यादातर हम बैठे हुए रहते हैं, तो इससे स्पाइन को बहुत डैमेज हो सकता है.
पूरी यंग जनरेशन यही बात कर रही है, मुझे घंटे लग जाते हैं सोने में. सो हाउ डू वी टैकल दैट?
सोने के पहले रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर स्क्रीन. मेडिटेशन, इसमें हम ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा से स्लो सो पाएंगे.
इफ आई वर्कआउट बिफोर बेड, आई एम नॉट एबल टू स्लीप बेटर.
तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो योर बॉडी इज रिलीजिंग एड्रेनलिन, नॉट एड्रेनलिन. बिफोर यू स्लीप इट हैज टू बी शट ऑफ.
फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं? 79% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते आउट ऑफ ऑल द पीपल जो हमारा एपिसोड देखते हैं. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली है या आपको अच्छा लगता है हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब दबाने से हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेटर से बेटर पॉडकास्ट लाते रहेंगे. हम सबको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्रेन फॉग जमते जा रहा है और हमारा ब्रेन डैमेज होते जा रहा है, विच इज़ वेरी स्कैरी फॉर एवरीवन इन टुडेज जनरेशन. आज का ये एपिसोड अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना, क्योंकि आज हमने बात करी है विथ द ब्रेन डॉक्टर, अ ब्रेन एक्सपर्ट. हमने ये समझने की कोशिश करी है कि अल्कोहल और स्मोकिंग कैसे ब्रेन को डैमेज करता है, वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव. लैक ऑफ स्लीप के क्या डेंजरस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं. कैसे हम अल्जाइमर से बच सकते हैं. ऐसे बहुत सारे ब्रेन हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज के एपिसोड में डिस्कस किए हैं, जो हर परिवार वाले को ये जानना ज़रूरी है मेरी नज़रों में. सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड एंड शेयर इट विथ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद भटेजा, जो एक न्यूरोसर्जन है और एक ऐसे पर्सन है जिनको ब्रेन हेल्थ के बारे में काफ़ी नॉलेज है. सो इन्जॉय दिस शो, बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन सके. इन्जॉय द शो. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक फॉलो हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है. आई वॉज रीडिंग अ स्टैट रिसेंटली दैट स्पाइन इज द बिगेस्ट थिंग दैट यंग पीपल आर रूइनिंग इन देयर लाइफ. ओके, एंड दिस वॉज आई थिंक जॉर्जिया टेक ने डाला था ये सब, तो इट वॉज देयर. एंड वहाँ पर वो ये लिख रहे थे कि यंग पीपल अनोइंगली आर रूइनिंग देयर फ्यूचर नॉट बाय फोकसिंग ऑन हाउ टू सिट प्रॉपरली. तो ये क्यों था और क्यों यंग लोग, आपको क्या लगता है यंग लोग कैसे अपनी स्पाइन ख़राब कर रहे हैं?
आई थिंक इसमें ज़रूर बहुत सारा ट्रूथ है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहते हैं, ज़्यादातर हम बैठे हुए रहते हैं पूरा दिन. सुबह उठ के ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के काम पे जाते हैं, फिर ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, फिर शाम को आके वापस गाड़ी में बैठ के आते हैं घंटों घंटों तक, क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है. फिर घर में आके बैठ के खाना खा के टीवी बैठ के देखते हैं, फिर बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, फिर सो जाते हैं.
यस,
तो इससे स्पाइन को बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि हम स्पाइन को अगर हम रिहैबिलिटेट शुरू से नहीं करेंगे, प्रीहैबिलिटेशन जो बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन इज़ आफ्टर कोई प्रॉब्लम होने के बाद. प्रॉब्लम होने के पहले अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एज इट इज़ ह्यूमन स्पाइन बहुत डेलिकेट चीज़ है, क्योंकि हम पहले फोर लेगेड एनिमल्स थे, अभी हम टू लेगेड एनिमल्स बन गए हैं. तो जो एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत जल्द तरीके से हो गया है, और हमारे स्पाइन ने इतना इवॉल्व नहीं किया है. हमारे बॉडी वेट को टू लेग्स पर सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे ही हमारा स्पाइन बहुत डेलिकेट सिचुएशन में है, वल्नरेबल है।
ओके
अगर हम उसको देखभाल नहीं करेंगे स्पाइन का, तो ज़रूर डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होने का डर।
क्या होता है डीजेनरेटिव?
डीजेनरेटिव मतलब वेयर एंड टेयर।
ओके,
वेयर एंड टेयर मतलब जैसे आप समझ लीजिए, आपके गाड़ी में आपने नया टायर लगाया और आपने बहुत ज़्यादा गाड़ी को चला लिया, तो आपका टायर वेयर आउट हो जाएगा। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, अच्छे रोड पे नहीं चलाएंगे, तो वैसे ही स्पाइन का भी हालत हो जाता है।
यू नो, जब आप सिटिंग की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम सिटिंग, हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक बैठ रहे हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, तो इसलिए हमारी स्पाइन ख़राब हो रही है। एक बहुत कॉमन लूज टर्म यूज़ होती है सोशल मीडिया पे, दैट सिटिंग इज एज डेंजरस एज स्मोकिंग।
जी,
राइट? डू यू बिलीव इन दिस? कि ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से ज़्यादा लोग मर रहे हैं देन स्मोकिंग, या ज़्यादा लोग मरेंगे?
इसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव सेंस में आप अगर सोचेंगे तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है, वो बड़े वेरिएबल होते हैं। लेकिन स्मोकिंग इज समथिंग आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आप से कितने सिगरेट पी रहे हैं और आपका रिस्क कितना है।
इसमें नहीं कर सकते कितने घंटे बैठ रहे हैं,
वी कैन नॉट। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स, जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बॉडी वेट, जो उनका एक्सरसाइज हैबिट है, इतने सारे चीज़ें पर डिपेंड करता है। तो इट्स डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सिटिंग विथ यू नो रिस्क टू लाइफ और इनक्रीज रिस्क ऑफ।
एक पॉडकास्ट देख रहा था डेनियल गोलमैन का, जहाँ पे वो इसकी बात कर रहे थे अबाउट हेल्थ एंड द रिसर्चेस ही इज बीन डूइंग अराउंड अफ्रीका, इंडिया एंड US, UK, अराउंड द वर्ल्ड। एंड वो बोल रहे थे कि इट्स अ मिथ दैट सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। हिज पॉइंट वाज कि सिटिंग, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी देर बैठो बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉन इंटरप्टिव सिटिंग में प्रॉब्लम है। कि अगर तुम सिर्फ बैठे हुए हो और तुम उठ नहीं रहे हो हर 20 मिनट में,
Correct.
अगर उठ नहीं रहे हो, थोड़ा मूवमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम है। तुम बैठ सकते हो जितना लंबा तुम्हें बैठना है, लेकिन हर 20 मिनट में तुम उठते जाओ। सो इंटरप्ट
तो हमको भी फॉलो करना चाहिए,
कर ले अभी 20 मिनट हर थोड़ी देर में उठे।
एक्चुअली आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में, और मैंने अपने पेशेंट्स को भी काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया है कि वो स्टैंडिंग डेस्क यूज़ करें। तो स्टैंडिंग डेस्क इज़ अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आपका जो कंप्यूटर है टेबल पर, वो उठ जाता है, तो आप खड़े होकर काम करते हैं 5-10 मिनट, फिर 20 मिनट बैठ के काम कर सकते हैं। और अगर वॉकिंग मीटिंग्स करेंगे लोगों बोर्ड रूम्स में, मतलब जो भी उनके मीटिंग्स, वॉकिंग मीटिंग्स करेंगे, तो इट्स अ हेल्थियर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
आई जस्ट येस्टरडे हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक वॉकिंग पैड, वो आज रात को लगने वाला है। इट्स तो हमने इसीलिए ऑर्डर किया कि जब जब मैं मीटिंग करूँगा या बात करते रहूँगा टीम से, आई विल बी वॉकिंग एंड डूइंग, दैट्स अ वेरी वॉकिंग पैड लगा रहा।
दैट्स अ रियली गुड हैबिट।
दैट्स अ न्यू थिंग आई हैव रियलाइज्ड। आई
एम डिलाइटेड टू हियर दैट।
आई ऑर्डर्ड वन एट होम, आई ऑर्डर्ड वन हियर। मैं घर पर भी लगाया कि घर पर जब मुझे फ़ोन यूज़ करना है या टीवी देखनी है, तो मैं वॉक करते हुए करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, बहुत कम फ़ोन पे बात करता हूँ। जैसे जो थोड़ा भी कर रहा हूँ वो इसके थ्रू ही करता हूँ, तो इट्स फाइन।
एक्चुअली हम अपना एंटरटेनमेंट को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके करेंगे कि हम एक्सरसाइज के दौरान ही एंटरटेनमेंट यूज़ करेंगे या सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे हैबिट्स बदल जाएंगे।
हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं हर 2-3 दिन में एक एपिसोड देखता हूँ, कुछ 20-30 मिनट्स का कोई भी एक जो मैं सीरीज़ देख रहा होता हूँ। तो मैंने अब टीवी के सामने वॉकिंग पैड लगा दिया है, तो अब मैं सारा एपिसोड 20 मिनट वॉक करने के बाद वॉक करते करते ही देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। एटलीस्ट लेट्स सी मैं फॉलो कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। अभी लगाया तो है उम्मीद में। दैट्स ऑल। सो इट वाज, आई वाज कोटिंग डेनियल गोलमैन, तो वो यही बता रहा था कि कितना बैठते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे बैठते हो उससे फ़र्क पड़ता है। Do you believe so as well?
कैसे बैठते हम, in the sense, what does
it मतलब interruptive sitting होती है?
हाँ जी, तो yeah, definitely I agree with that.
तो वो है। Plus उसके बाद उसका एक और ये था कि a lot of people are sitting like this. That's also a problem.
Those are called posture cues. So actually, you can set an alarm on your phone or your watch कि हर 20 मिनट में एक अलार्म बीप आएगा, तो that is a reminder कि अपना posture के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दें कि आप कैसे बैठ रहे हैं।
तो पोश्चर लोगों को पता भी नहीं चलता है ना कि खराब होते जा रहा है, कैसे होता है। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं चेन्नई गया था, टू गेट माई पॉस्चर टेस्टेड इन मल्टीपल मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे बॉडी में जस्ट टू ओवरऑल हेल्थ विथ माई मॉम. तो वहाँ पे गया, उन्होंने मेरा कुछ AI टूल्स के थ्रू पॉस्चर स्क्रीनिंग करी और उसने बताया कि दैट माई शोल्डर था कमिंग इन बिकॉज मुझे लेबरल टीयर हुआ था. तो लेबरल टीयर के बाद से वो हैवी हो गया मेरा फ्रंट साइड, मेरा नेक और हेड भी हैवी होते जा रहे हैं. सो आई डोंट इवन नो, बट मेरे हेड का वेट मेरे बॉडी प्रपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए 5.5 kg, पर बिकॉज मेरा वो पॉस्चर धीरे धीरे उस टीयर के बाद से ख़राब हो रहा है, माई हेड इज़ नाउ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 17.7 kg. तो वो भारी हो गया और वो आगे हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि अगर एट दिस एज ये हो गया एंड इफ़ यू डोंट फिक्स इट टुडे देन गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते जाते तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा एंड देन ओवरऑल आपकी नेक को सब ये नेक पेन जो होता है पीछे, फिर आपका हेड पेन होने लग, हेडेक जो होता है वो सब इससे रिलेटेड है. एंड ये अगर मैं मेरी मॉम को ट्रीट कराने नहीं जा रहा होता तो मुझे लाइफ में नहीं पता चलना था ये. एंड प्रॉब्ली 2-3 साल 5 साल बाद मैं आपके पास आता और बोलता कि सर ये क्या हो रहा है, राइट? सो अगर लोग अब पता चल गया तो आई एम वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि व्हाट टू डू. अब उन्हें फिजियो उसके लिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड डूइंग मोर बैक एक्सरसाइजेस सो दैट वी स्टार्ट गोइंग देयर, चेस्ट की स्ट्रेचिंग बहुत स्टार्ट कर दी, ऑल द थिंग्स व्हिच दे टोल्ड मी टू डू इट. पर ये 99% लोगों को तो कभी लाइफ में पता भी नहीं चलेगा, तो कैसे पता करें? और क्योंकि हमको किसी ने बताया भी नहीं कि बैठते कैसे हैं या क्या हमारा पॉस्चर अफेक्ट कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा? जो ये नॉर्मल इंसान देख रहा है वो कैसे ध्यान रख सकता है कि उसका जो बॉडी वेट है वो सही रहे और 5 साल बाद उसे नहीं जाना पड़े किसी के पास?
वेरी गुड क्वेश्चन. मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि जब हम इंसान बड़े हो जाते हैं, हमारा जो एजुकेशन में कोई हमको बताता नहीं है दो चीज़ों, अब हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम सीखते हैं लोगों को देख के और अपने ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं. एक तो हाउ टू मूव एंड दैट इंक्लूड्स हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू लिफ्ट वेट्स, हाउ टू स्टैंड एट्सेट्रा. सेकेंड इज हाउ टू थिंक. कोई हमको सिखाता नहीं है, सो वी डिवेलप अनहेल्थी वेज ऑफ मूविंग एंड वी डिवेलप अनहेल्थी वेज ऑफ थिंकिंग.
ट्रू.
सो मेरे ख्याल से एटलीस्ट वंस इन एवरी वंस लाइफ इफ एनीबडी हैज़ द अवेयरनेस कि हम अपने बॉडी के बारे में हमको हम कंसर्न हैं, हम हेल्थ सेंट्रिक हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन तो ज़रूरी बनता है
हर और साल. एक
एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार.
ओके.
एटलीस्ट असेस करने के लिए आपका पॉस्चर कैसा है, आपका मूवमेंट पैटर्न कैसा है, कहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है. सेकेंड इज एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन तो होना चाहिए कि मेरे थिंकिंग हैबिट्स हेल्थी हैं या मेरे लिए हार्मफुल हैं.
इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे रैंक करती है स्लीप डेप्रिवेशन में, राइट? मतलब इंडिया में दुनिया में नंबर 2 में हमारी सबसे ख़राब स्लीप है. लोग ज़्यादा सो ही नहीं पाते. तो व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों होगा? और इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन है कि कम सोने से या बेकार सोने से ब्रेन हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है?
सो मैं आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आंसर करता हूँ पहले. आई ट्राई एटलीस्ट. क्यों ऐसे होता है? आई थिंक देर आर मल्टीपल रीजंस. एक तो आई फील इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम यूजली क्राउडेड सिटीज़ में रहते हैं, एक दूसरे के घरों के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है. आवाज़ कंटिन्यूसली 24 घंटा, ट्रैफिक, लोग, टीवी, फोन, ये सब. तो आई थिंक नॉइज़ पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज.
ओके.
सेकेंड इज खास करके आई थिंक जो आप डेटा बता रहे हैं वो शायद सिटीज़ में ज़्यादा होगा. तो सिटीज़ में लाइफ काफ़ी बिजी हो गया है, ट्रैफिक इश्यूज. तो आप काम पे अगर आप 8-9 घंटा स्पेंड करते हैं, फिर ट्रैफिक में आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो टाइम कहाँ रह गया? हमेशा हम प्रायोरिटी सोने पर हम कम देते हैं, हम अपने स्लीप को कम प्रायोरिटी देते हैं और हमारे बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और मतलब इट्स डिफ़िकल्ट लाइफ, वी हैव टू अर्न आर लिविंग. काम करना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ये बहुत बिजी लाइफ हो जाता है. तो हम हमेशा अपने स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं.
तो हमें लाइक बिकॉज हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है और हमें हमेशा कुछ बेटर चाहिए कल, इसकी वजह से देयर इज अ कांस्टेंट थिंग जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते कम.
आई थिंक कल्चरली भी वी हैव दिस हैबिट कि हम स्लीप डेप्रिवेशन को ग्लोरीफाई कर लेते हैं.
या आई यूज्ड टू बी दैट वन पर्सन, आई एम सॉरी. I used to be that person. I still am sort of that person. I'm changing myself.
So do you mind if I ask you how many hours of sleep you get a night?
Please, my whole audience knows ki main bahut bekar hoon sone ke mamle mein. Bahut mera last year ka, so I've been wearing and tracking my sleep since.
Nice. You're wearing a Whoop strap.
Yeah. To main pichle mujhe ab ye mera 1.5 saal ho gaya. To pichle 1.5 saal se main track kar raha hoon meri sleep. Mera last year ka average hai 4 hours 20 minutes, 4 hours 30 minutes.
Oh my God.
So वो बहुत बेकार है, बट पिछले 3 महीने से मैं बहुत बेटर हो गया हूँ. अब मेरा एवरेज
so that's your 2024 resolution.
Yes. So मुझे मेरा जो है रिकवरी बढ़ानी है एंड मुझे मेरी स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours के ऊपर लेके जानी है. Fantastic. अभी मैं मेरा लास्ट 1 month का एवरेज है 6.5 hours, मतलब 4 घंटे से 6.5 घंटे बहुत बेटर प्रोग्रेस है मेरे लिए.
आप अपने स्लीप का जो स्टेजेस है वो भी मॉनिटर करते हैं?
हाँ, वो बहुत बेकार हो रही है अभी मेरी. इतनी ज़्यादा डीप रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं होती मेरे पास, बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग. पर आई रियलाइज दिस कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ, एंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. बट मेरे एक्सपीरियंस में बाद में बात करेंगे, पहले आप बताओ कि
स्लीप इज वेरी
हाउ स्लीप अफेक्ट्स द ब्रेन. अगर लोग ढंग से नहीं सोते हैं, और हम इंडिया में तो कूल मानते हैं कि नहीं सोना चाहिए, कम सोना चाहिए, लेट्स डू दिस. इनफैक्ट पीएम मोदी रिसेंटली वाज टेलिंग दैट ही ओनली स्लीप्स वेरी लेस, ही स्लीप्स 4 to 5 hours एंड ही इज बैड एट स्लीपिंग. सो इफ नेशनल फिगर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स ये सेलिब्रेट करते हैं, न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, पॉडकास्टर्स एंड पीपल लाइक मी हु आर एजुकेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत गलत चीज़ है.
Absolutely.
According to you, 100%. So हम क्यों गलत कर रहे हैं, हमें बताओ.
तो स्लीप इज बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेन के लिए. इन फैक्ट इट इज प्रोबेबली लैक ऑफ स्लीप इज एज बैड, मे बी वर्स देन एल्कोहल.
क्या आप बात कर रहे हो?
एब्सोल्युटली.
ओके, व्हाई डू यू से सो?
देयर इज अ स्टडी जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, नॉट ऑन द रोड, कंट्रोल्ड कंडीशंस में उनको अल्कोहल दिया गया था, और एक और ग्रुप को स्लीप डिप्रिवेशन का जो कंट्रोल ग्रुप था, तो उनको सिर्फ 4 घंटे का स्लीप दिया था. फिर उनको ड्राइविंग टेस्ट दिया गया था अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. गेस कीजिए किन्होंने ज़्यादा मिस्टेक्स किया है?
यू टेल मी.
द स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप.
अल्कोहल वालों से कम गलतियां करी,
नहीं,
अल्कोहल वालों ने कम गलतियां करी, और जो कम सोए थे,
yes,
उन्होंने ज्यादा गलतियां करी.
सो दैट इज द एक्सटेंट टू विच स्लीप कैन अफेक्ट द ब्रेन, बिकॉज इट अफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग, रिफ्लेक्सेस, सब कुछ. सेकंड, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं स्लीप में. जो एक प्रोसेस होता है ब्रेन में, जो ज्यादा डॉक्टर भी बात नहीं करते इसके बारे में, ब्रेन इज अ आइसोलेटेड ऑर्गन, बाकी बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है. हम सोचते हैं कि ब्रेन इज लाइक इन अ साइलो, कंप्लीटली इंसुलेटेड. ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज होता है जहाँ पे ब्लड में जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो आसानी से ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को इंसुलेट करता है, क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में कि इट्स प्रोटेक्टेड.
ओके,
तो ब्रेन अपने वेस्ट को कैसे निकालेगा? सो द सिस्टम टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि सेल्स जब होते हैं, सेल्स इतने एक्टिव होते हैं ब्रेन में, इनफैक्ट इट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द बॉडी, तो ऑब्वियसली वेस्ट तो जनरेट होगा ही, क्योंकि ब्रेन इज वर्किंग ऑल द टाइम. तो वेस्ट कैसे डिस्पोज होगा? ड्यूरिंग स्लीप.
ओके,
एस्पेशली ड्यूरिंग स्लो वेव स्लीप.
स्लो वेव स्लीप क्या होता है?
स्लो वेव स्लीप इज स्टेज 4 स्लीप, जहाँ पे आप अपने आपका ब्रेन रेस्ट करता है, बॉडी इज इन रेस्टफुल स्टेट. तभी जब होता है समथिंग कॉल्ड द ग्लिम्फैटिक सिस्टम, जहाँ पे जो फ्लूइड है ब्रेन में वो वॉश आउट होके सब सेलुलर डेब्री या वेस्ट को निकाल देता है. और इसी से अगर हम ये ग्लिम्फैटिक सिस्टम को मौका नहीं देंगे कि रात को हमारे ब्रेन के सेलुलर डेब्री को क्लीन करे, तो बिल्डअप ऑफ वेस्ट मटीरियल हो जाता है, एंड दिस इज वॉट लीड्स टू अर्ली न्यूरल डिजेनरेशन, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज.
यू आर टेलिंग मी अगर मैं लंबे समय तक कम सोता हूँ देन मेरे को हाई चांसेस हैं टू गेट अल्जाइमर्स.
इट्स नॉट बीन कंक्लूसिवली प्रूवन बट एविडेंस इज सीमिंग टू सजेस्ट के ऐसे होने का संभावना है. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल
अबाउट स्लीपिंग.
गिव टॉप प्रायोरिटी टू आवर स्लीप.
कितना सोना चाहिए ऑन एन एवरेज एक इंसान को?
अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. एक ग्रुप ऑफ लोगों को केव में बंद किया गया था जहाँ पे कोई नेचुरल लाइट डे नाइट का कोई उन्हें अब अनुभव नहीं था. क्लॉक्स वॉचेस कुछ नहीं थे. तो दे फाउंड मोस्ट पीपल स्लीप एन एवरेज ऑफ 7 to 8 hours विच इज वॉट एन एवरेज पर्सन शुड बी स्लीपिंग.
कि अगर केव में रखा था तो 7-8 और जो बाहर नॉर्मल कंडीशन में सोते उनको ज्यादा सोना चाहिए कि कम सोना चाहिए?
7-8 hours आई थिंक ऑन एवरेज इज
एडिक्वेट. शुड
या
बट ऐसे नहीं होता स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा ब्रेन. क्वेश्चन भी नहीं पूछा. स्क्रीन टाइम डॉक्टर सेड डेफिनेटली लाइक व्हाट आर यू आस्किंग.
आई नो स्क्रीन टाइम इज नंबर वन डिसरप्टर. नंबर वन डिसरप्टर आजकल के जमाने में.
बिकॉज आई वाज रीडिंग कि जो लोग स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा होता है उनको ज्यादा स्लीप चाहिए. बिकॉज
अच्छा वैसे पूछ रहे थे सॉरी आई इंटरप्टेड बट
जिनको स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा होता है उनको स्लीप ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो डीप स्लीप बहुत लेटर अचीव करते हैं. उनके ब्रेन को कॉन्स्टेंटली लगता है कि वो थका हुआ है एंड इसकी वजह से थकी हुई स्टेट से आई थिंक किसी एक स्टेट आई डोंट नो द व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेट जहाँ पर कंप्लीट रेस्टेबल स्टेट में जाने में टाइम लगता है. इसकी वजह से जो लोग ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं उनको ज़्यादा सोना चाहिए.
इट डिपेंड्स वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन पे. इज इट वर्क रिलेटेड और इज इट सोशल मीडिया और इज इट एंटरटेनमेंट. आई थिंक दैट ऑल्सो मैटर्स.
ओके क्यों?
सो इफ यूर जैसे कि आप वर्क में बहुत इन्वॉल्व हैं टिल वेरी लेट एंड देन सडनली आप यू ट्राई टू स्लीप तो अनवाइंड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना. तो दैट मे इंक्रीज द रिक्वायरमेंट फॉर स्लीप.
ओके
बिकॉज दैट जो बोलते हैं इसको स्लीप लेटेंसी कि हाउ लॉन्ग यू टेक टू फॉल अ स्लीप आफ्टर डिसाइडिंग टू गो टू स्लीप व्हेन यू लाई डाउन इन योर बेड.
ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आप बताओ. पूरी यंग जनरेशन यही बात कर रही है कि जब मैं सोचता हूँ सोने का उसके बाद मुझे घंटे लग जाते हैं सोने में. एंड बिकॉज मैं 15 मिनट आधा घंटा ट्राई करता हूँ और मैं नहीं सो पाता इसलिए फिर मैं वापस फ़ोन निकाल देता हूँ.
हाँ.
एंड देन फिर मैं 2 घंटे फ़ोन पे ही रहता हूँ एंड देन फ़ोन हटा के फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ फिर मुझे आधा घंटा टाइम लगता है. सो कब मैं 10 बजे जो सोचा था सोने का वो 4 बज जाती सुबह. आई डोंट नो. And that's a constant
that's
problem.
A serious problem.
That's a very serious problem. How do we tackle that?
Put away your devices.
But then it doesn't let me, I'm not able to sleep anyway for like 1 hour, 2 hour.
So few things.
I'm talking about people. मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी. मैं दूसरों की याद कर रहा
हूँ. यू आर क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव.
या मुझे कहीं भी किसी भी टाइम पे कैसे भी सुला दो विद इन 5 मिनट्स आई विल बी आउट.
गुड. दैट मींस यू हैव नो इश्यूज विद स्लीप लेटेंसी.
हाँ आई डोंट हैव इश्यूज विद स्लीप लेटेंसी. इट्स इफ आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे देन इट टेक्स ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस दैट आई वोंट बी एबल टू स्लीप वेरी नाइसली बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग.
बट सो फ्यू थिंग्स. वन इज एक्सपोजर टू द लाइट ऑफ द स्क्रीन इज डेफिनेटली गोइंग टू मतलब स्लीप अफेक्ट करने वाला है.
क्या करता है ब्रेन में क्या होता है जब मैं स्क्रीन देखता हूँ?
तो जब आप स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन इज प्रेडोमिनेंटली ब्लू लाइट. आप फिल्टर्स वगैरह अपने फोन पे चेंज कर सकते हैं टू रेड लाइट बट ब्लू लाइट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस टू द ब्रेन. तो आपके जो रेटिना में सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स वो लाइट सेंसिटिव सेल्स ब्रेन को इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और ब्रेन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा सर्केडियन रिदम कंट्रोल होता है. सर्केडियन रिदम मतलब डे नाइट का जो साइकिल है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारा सर्केडियन रिदम इज अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में वी आर सपोज टू स्लीप 7-8 घंटा रात को हम वी आर सपोज टू स्लीप. अगर हमारे आंखों में लाइट जा रहा है तो आवर ब्रेन गेट्स कन्फ्यूज्ड कि दिन है कि रात है. सो द होल सर्केडियन क्लॉक इज मेस्ड अप.
Okay, so after a point, do you think we should stop using screen? At what time?
Yeah, it's difficult to give broad guidelines. मतलब लोग अपना काम उनको भी important रहता है काम करना चाहिए emails रहते हैं जो भी करना है. But over a period of time, closer to the bedtime, हमको screens पर कम ध्यान देना चाहिए. हमारे घरों में लाइटिंग थोड़ा सबड्यूड रखना चाहिए. एक घंटे के पहले, सोने के पहले, वी शुड स्टार्ट वाइंडिंग डाउन.
ओके,
लेस स्टिम्युलेटिंग कॉन्टेंट, रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर स्क्रीन, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा नॉन स्लीप डीप रेस्ट प्रोटोकॉल, योगा निद्रा जो बोलते हैं, अगर इसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो इट विल रियली पुट आवर माइंड एंड ब्रेन इनटू अ स्टेट जहाँ पे हम अच्छा से स्लो सो पाएंगे, जल्दी से और अच्छा से.
सो आजकल रेड ग्लासेस आने लग गए हैं कि स्लीप से पहले आप रेड ग्लासेस पहनने लग जाओ. आर दे
बेसिकली लाइट, ब्लू लाइट ब्लॉकर्स?
हाँ, ब्लू लाइट ब्लॉकर्स.
जी हाँ.
यू थिंक दे आर बेनिफिशियल?
आई थिंक दे आर बेटर देन
नो
नॉट यूजिंग देम.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लासेस. एक होते हैं ब्लू लाइट ब्लॉकर, जो सेम जैसे आपने ग्लासेस पहने वैसे ही पहने, बट वो लेंस में ब्लू लाइट ब्लॉकर होता है वो बोलते हैं. और एक आते हैं रेड कलर के, जिसमें एक्चुअली ब्लू लाइट हटी जाती है, दिखती ही नहीं है.
करेक्ट.
सो व्हाट इज बेटर, एंड दोनों यूजफुल होते हैं कि नहीं होते?
ब्लू लाइट ब्लॉकर्स डेफिनेटली यूजफुल होते हैं, रेड ग्लासेस भी जो आप बता रहे थे वो भी यूजफुल होते हैं. देयर इज सम एविडेंस कि आजकल के रेड लाइट एंड रेड फिल्टर्स जो हम यूज करते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू मैक्यूलर विजन. जो मेन रेटिना में जो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे हम हाईएस्ट क्लैरिटी से विजन को अप्रिशिएट करते हैं, तो दो सेल्स आर मोर एनर्जी व्हेन वी यूज दिस रेड लाइट फिल्टर्स और रेड लाइट. तो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अफेक्टिंग द लाइट डार्क साइकिल इन द ब्रेन.
ओके, सो नो ग्लासेस वर्स, ब्लू रे ग्लासेस गुड, and then red is better. Like, is that,
yes,
if you want to put
if
it
I really ranking. Have to put it in that way, yes, probably.
You know, I'll tell you one of the most crazy realization I've had apart from all these researches. Probably for you it won't be crazy because you read all of these things, but for normal people it'll be, right? If I work out before bed, before sleeping, I'm not able to sleep better.
That is true, very well known.
I didn't know that.
Yeah.
And I was like, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, थक जाऊँगा तो मैं बढ़िया सोऊंगा. बट अगर मैं अच्छा वर्कआउट करके सोने जा रहा हूँ तो मेरे को अच्छी नींद नहीं आएगी. मे बी मैं नंबर ऑफ आवर्स होंगे कि मैं थक गया सो लिया, बट मेरी रिकवरी बॉडी अच्छी नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होती.
तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो योर बॉडी इज रिलीजिंग एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन में क्या होता है? टू योर ब्रेन स्टिम्युलेटिंग. Your brain does, your adrenaline, noradrenaline, जो ब्रेन में है बिफोर यू स्लीप इट हैज़ टू बी शट ऑफ. तो ब्रेन में एक जगह है कॉल लोकस सेरुलियस जहाँ पे adrenaline, noradrenaline रिलीज होता है. तो प्री रिक्विजिट अच्छे नींद के लिए कि वो शट ऑफ हो जाए.
ओके, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जस्ट स्लीप, और उस टाइम पे आपने बोला कि नॉट स्लीपिंग इज वर्स देन alcohol.
यस,
हाउ बैड इज alcohol?
वेरी बैड
फॉर ब्रेन.
See, I'll tell you something about the brain. We are born with a certain number of nerve cells, approximately 85 to 90 billion nerve cells. These nerve cells stay with us for the rest of our lives. There is no other part of the body jahan pe same cells aapke paas hamesha rahenge. आप अपना टंग ले लीजिए, टेस्ट बड्स, वो रीजेनरेट करते रहते हैं एवरी 2-3 डेज. स्किन सेल्स कंटिन्यूसली रीजेनरेटिंग, आपके इंटेस्टाइनल सेल्स कंटिन्यूसली रीजेनरेटिंग. ब्रेन सेल्स रीजेनरेट नहीं होते हैं. तो एक बार अगर डैमेज हो जाता है तो इट्स गॉन फॉर लाइफ. न्यूरोजेनेसिस एंड रीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड वेरी वेरी रेयर इन द ह्यूमन बॉडी. तो कोई भी चीज़ से अगर हमारे नर्व सेल्स डैमेज हो रहे हैं, एंड अल्कोहल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अब्यूज्ड न्यूरोटॉक्सिन्स ऑन द प्लैनेट.
मीनिंग
अल्कोहल इज अफेक्ट्स आवर नर्व सेल्स वेरी बैडली. इट किल्स नर्व सेल्स, इट अफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नर्व सेल्स, इट अफेक्ट्स ब्लड फ्लो टू द नर्व सेल्स. इट्स अ टॉक्सिन टू द नर्व्स.
क्या करता है अल्कोहल? हाउ इज इट डैमेजिंग ब्रेन? उससे क्या होगा नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मुझे बताओ? अगर कोई ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है वर्सेस कोई अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है, क्या डिफरेंस होगा दोनों के ब्रेन में और उससे उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा?
तो अल्कोहल कंजम्पशन से ब्रेन नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं. एनर्जी ऑफ द नर्व सेल्स, जो ऑर्गेनल्स होते हैं नर्व सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, दे गेट पॉइजन्ड. उससे नर्व सेल्स मर जाते हैं क्योंकि
उससे अगर क्या होता है
तो इट अफेक्ट्स वेरियस फंक्शंस, खास करके मेमोरी.
ओके.
इट कैन लीड टू डिमेंशिया, इट कैन लीड टू श्रिंकेज ऑफ ब्रेन वॉल्यूम. अगर आप MRI देखते हैं अल्कोहलिक्स में, आई मीन अल्कोहलिक्स मीन्स यू कैन से अल्कोहल यूज डिसऑर्डर. आजकल वी कांट कॉल इट अल्कोहलिज्म, इट्स नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट.
ओके.
वी हैव टू कॉल इट अल्कोहल यूज डिसऑर्डर.
ऑलराइट.
अगर आप उनके MRI देखते हैं तो उन ऑन एवरेज उनका जो ब्रेन वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाता है. श्रिंकेज इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नर्व सेल्स. एट एनी कॉस्ट आई वुड
नॉट से,
नॉट एडवाइज एनी वन टू ड्रिंक. Definitely not drink in excess.
But people still do.
Yes.
Are there different types of alcohol jo zyada kharab hote hain than other type of alcohol?
I don't think all so. All are the same.
So from a small breezer, ek normal breezer ya ek beer se leke whiskey tak sab same hai.
So alcohol content unme different hai na. Hmm. So if you're consuming lower amounts of alcohol, shayad damage kam hoga. In say whiskey, the percentage of alcohol is higher, so that's more damaging in a smaller volume.
Okay. So what, apart from if you have to rank it, give me top three, worst, good and better. Worst is this alcohol, never drink it, kyunki ye sabse zyada kill karta hai. Good is, theek hai, basic, kabhi kabhi. Better is ki if you can't leave alcohol and you still have to do social drinking, aapko mahine mein ek bar peena hi hai kyunki aapki life aisi hai, party karna hai, whatever. तो आप ये पी सकते हो, क्या होगा?
I think
I'm putting doctor in a tough spot, but why not?
So I think all types of alcohol, आप अगर एक दो तीन बोलेंगे तो alcohol, alcohol, alcohol बोलूंगा, but to give your question a proper appropriate answer, मैं बोलूंगा कि शायद the neat alcohol like shots definitely the worst. Second is
shots are the worst.
Because you're doing large amounts of alcohol in multiple fast doses.
Hmm.
Definitely not. Second would be the hard liquors.
Jaise?
Jaise ke whiskey, vodka, those sort of spirits, what you call. If you really have to drink socially, to I think a beer or a glass of red wine should be okay.
Okay. There's a new trend. Vaping. वेपिंग जिस तरीके से ग्लोबली जो ट्रेंड बना है और जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है इज इनसेन. एंड मैंने देखा है लोगों को वो बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो गए. सो वेपिंग क्या ब्रेन को हार्म करता है किसी रीज़न से कि वेपिंग इज़ हार्मलेस?
वेपिंग इज लाइक अ पुअर कज़न और अ न्यूअर कज़न ऑफ स्मोकिंग आई गेस.
ओके. पुअर कज़न ऑफ स्मोकिंग. व्हाई पुअर कज़न ऑफ स्मोकिंग? टेल मी, क्या होता है स्मोकिंग से और क्या होता है वेपिंग से?
Brain. I don't know if there are enough studies on vaping, but I think the jo vaping mein chemicals, I think chemicals kam hote hain shayad, because in vaping they don't use tobacco, they use some form of liquid. So that liquid can be created in a way that it doesn't contain many carrier chemicals, it only contains a few main ingredients like nicotine and so on. But smoking any of these chemicals, especially tobacco, is proven to be harmful, especially on the brain. Kyunki brain, recently mein ek study aaya tha from the UK Biobank. So UK Biobank is a very large database jahan pe sainkdon logon ka biological data store kiya gaya hai. To unhone study kiya tha bahut sare saalon tak to study the effect of smoking on brain size. To smoking and brain size ka correlation jo hai ki brain size shrink ho jata hai smokers mein. Even after giving up smoking.
Okay.
So, effect of smoking is, matlab long-lasting effect rehta hai. So, if you have smoked for 10 years, 15 years, 20 years and then given up, it's still, they found un logo mein bhi, compared to those jinhone kabhi cigarette nahi piya hai, ki unka brain shrink ho jata hai jaldi, premature shrinkage. So, that is one. Abhi vaping is a new phenomenon. So, iske baare mein we don't have that much data. But any chemical that you are, जो आप अपने body में डाल रहे हैं, which can technically cross the blood-brain barrier, जिनके बारे में we just spoke now, that can potentially have an effect on the brain and the nerve cells.
So I was watching a podcast of Andrew Huberman. He said that smoking is bad for your body, vaping is bad for your brain, and he was explaining why. सो स्मोकिंग हैज सो मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर होल बॉडी. वेपिंग डजन हैव एज मच एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी एज स्मोकिंग. बट वेपिंग से क्या होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली एवरी पफ दैट यू टेक इट्स हिटिंग अ सम इट इज सेंस ऑफ डोपामीन. सो यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन कॉन्स्टेंटली टू टेक डोपामीन इन एवरी सेकेंड. So you take a dopamine, then you leave it, then you take. So you become addicted to constant dopamine, and then everything else stops giving you pleasure in life. And if you do it for long enough, you have completely trained your brain to take dopamine from this thing, and that's affecting your brain at a very large scale, which people don't even realize. So vaping is a, according to him and few researches, vaping has been found out is worse addiction than smoking in some cases.
See, dopamine is the neurochemical of addiction in any case. आप कोई भी addiction को ले लीजिए, alcohol addiction, smoking, vaping, social media addiction, any of the other more serious drugs, everything, the neurochemical basis is dopamine.
So if you are constantly getting dopamine from vaping or anything, it's killing your mood, then is killing your life in some sense.
Yes.
क्योंकि आप एक चेज करते आ रहे हो, ब्रेन आपको सिर्फ बोल रहा है मुझे ये चाहिए और किसी चीज़ पे ध्यान भी नहीं लग रहा है. सो यू लूज फोकस, यू लूज इंजॉइंग मोमेंट्स, यू लूज हैप्पीनेस, एंड आपको सिर्फ एक ही चीज़ की अडिक्शन और तलब बोलते ना वो लगते जा रही है, विच इज़ वाई यू आर मिसिंग आउट अ लॉट इन योर लाइफ.
तो पॉप कल्चर में जो बताते हैं कि डोपामीन इज द रिवॉर्ड केमिकल, कि आपको डोपामीन हिट के पीछे आप भागते रहते हैं, इसीलिए वेपिंग और इंटरनेट स्क्रोलिंग जो हम करते हैं सोशल मीडिया पे, तो दैट्स ऑल डोपामीन रिलेटेड. बट मोर इम्पॉर्टेंट जो हमको समझना चाहिए, डोपामीन इज एक्चुअली द मोटिवेशन केमिकल.
जी okay.
जब आप सुबह उठते हैं तो यू से आई हैव टू गेट दिस डन टुडे, दैट्स डोपामीन. एंड जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो द ब्रेन्स मैकेनिज्म इज वेल डन, हियर्स अ रिवॉर्ड. तो आपका डोपामीन स्पाइक हो जाता है एंड यू फील वेरी गुड, गुड फीलिंग, तो यू वॉन्ट टू डू इट अगेन. बट अर्लियर डेज हम क्या करते थे, दैट वॉज इट टुक हार्ड वर्क
टू अचीव
दैट रिवॉर्ड, एंड इट टुक टाइम, इट डिडंट कम वेरी फ्रीक्वेंटली. ऐसे नहीं कि एक घंटे में 100 बार आ गया. आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वेपिंग, वट एवर यू टेक, इट्स हैपनिंग इमीडिएटली एंड रिपीटेडली विथ वेरी लिटिल एफर्ट. तो दैट इज वॉट इज कॉजिंग अडिक्शन.
ओके, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इन ब्रेन्स? देर इज डोपामीन, वो जरूरी है क्योंकि रोज सुबह उठ के तुम्हें मोटिवेट होना चाहिए, एक्साइट होना चाहिए टू डू समथिंग. कितने केमिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ?
ब्रॉडली स्पीकिंग ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, देर आर 4 केमिकल्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट. एक तो ऑब्वियसली डोपामीन, सेकंड सेरोटोनिन, थर्ड इज एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, एंड फोर्थ इज एसिटाइल कोलिन.
ओके, व्हाट इज दैट? और कॉर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन, ये सब?
कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज आल्सो हार्मोन.
ओके,
सो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, जो मैंने आपको 4 नाम बताए थे. द अदर थिंग्स आर कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वो सब हार्मोन्स है. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, वो सब ब्रेन पे एक्ट करते हैं.
ओके, उस पर सेकेंड बात करते हैं, पहले चार इमोशंस पे बात करते हैं.
सो डोपामीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, प्लेजर, इन सब चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है. इट्स ऑल्सो वर्किंग मेमोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ठीक है,
तो हाउ टू मॉड्यूलेट योर डोपामीन लेवल्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब लोगों के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सब लोगों के लिए. एक तो बार बार डोपामीन हिट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करने वाले हैं. आपको लगेगा कि आप सिर्फ इसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपको और कुछ कोई चीज़ भी में इंटरेस्ट नहीं होगा आपको. तो एक तो आपको अपने डोपामीन लेवल्स को मॉड्यूलेट करना चाहिए. कैसे? बहुत सारा सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए. ये जो रिवॉर्डिंग एडिक्टिव बिहेवियर है, चाहे स्मोकिंग हो, वेपिंग हो, अल्कोहल हो, सब्सटेंस यूज हो, सोशल मीडिया हो, जितना उसको मॉड्यूलेट आप कर सकते हैं, मॉनिटर कीजिए, मेजर कीजिए, दिन में कोई एलोकेटेड टाइम पे ही कीजिए अगर आपको करना ही है. सेकंड, आपको एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट और एडिक्वेट एक्सरसाइज का ज़रूरत है टू मॉड्यूलेट योर डोपामीन लेवल्स.
ओके,
सो एज लॉन्ग एज यू डू दिस, डोपामीन लेवल्स आपके हेल्थी रहेंगे.
ओके देन नेक्स्ट वर्स अपार्ट फ्रॉम डोपामाइन
नेक्स्ट इज सेरोटोनिन
आई हैव अ क्वेश्चन ऑन डोपामाइन अगेन बट मैं बाद में पूछूंगा इसको
नेक्स्ट इज सेरोटोनिन सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जब आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ना दैट इंक्रीजेस सेरोटोनिन लेवल्स इन द ब्रेन
सेरोटोनिन क्या करता है और क्यों होता है
सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इट्स अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन इज एक्साइटेटरी सेरोटोनिन इज इनहिबिटरी
मतलब
काम्स द ब्रेन डाउन
वो ये हैप्पीनेस होती है
यस सो दैट्स अ हैप्पीनेस मॉलिक्यूल
सो काम इज इक्वल टू हैप्पीनेस
यस
हैप्पीनेस एक्साइटमेंट नहीं होती
नॉट नेसेसरली यू कैन बी हैप्पी विदाउट बीइंग एक्साइटेड
वाओ
इफ यू आर कंटेंटेड
ओके
एंड इफ यू आर काम यू आर पीसफुल can still be happy. You don't have to be excited. Excitement more relates to pleasure, expectation, anticipation, which is more related to dopamine. Learning is a very good way of increasing your serotonin.
Oh, yes.
So happiness basically comes from, I was reading a book, very nice book recently, jiska naam hai The Art and Science of Happiness.
Okay.
It's written by a gentleman called Arthur Brooks and Oprah Winfrey.
Okay, nice.
इसमें ही टॉक्स अबाउट वॉट इज द हिज बिलीफ अबाउट वॉट लीड्स टू हैप्पीनेस इट्स पीपल एंड मेमरीज एंड द अदर थिंग इज सैटिस्फैक्शन विच कम्स फ्रॉम लर्निंग एंड इट कम्स फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स
या ओके मूविंग फॉरवर्ड सो वी नीड डोपामाइन वी नीड सेरोटोनिन सेरोटोनिन काम है जो हमें जो चीज़ें काम करेगी देन द थर्ड वन वाज
नॉरएड्रेनालिन
नॉरएड्रेनालिन इज व्हाट
नॉरएड्रेनालिन बेसिकली हमारे एड्रीनल ग्लैंड से जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होता है अमीनो एसिड सिक्रीट होता है इट्स दैट तो ब्रेन में भी एक सेंटर है जहाँ पे एड्रीनालिन सिक्रीट होता है इट्स अ एक्शन ब्रेन को वेकअप करता है एक्साइट करता है get ready for action so it's the go neurochemical getting the brain excited and all revved up for action
okay so skydiving karne kud jao that
yes
so we need that
and Should also we... to for, you know to improve our attention and focus jab humko kuch kaam karna hai we have to watch something very carefully or we have to pay attention that time it's very important to have the noradrenaline to subah ke time pe jab hum uthte hain we go about our day to day activities we attend class that time that's on that center is on
but wo to bahut sad moment rehta hai mere liye ki subah utho workout karne jana padega why
but finally aap kar hi lete hai na
ha but jana ab to jana hi padega na resilience is very high
because of your sleep deprivation
I didn't and what was the fourth one and then
acetylcholine
okay kya hota hai wo
Acetylcholine is mainly for cognition and clarity. जब हमको कुछ focused work करना है पढ़ना है कोई new concepts समझने हैं तब हमको acetylcholine का ज़रूरत है
तो focus कैसे बढ़ा सकते हैं
We can बहुत सारी चीज़ों से बढ़ा सकते हैं Meditation, there are supplements, many things.
Okay, what kind of supplements to increase focus? कौन से ऐसे supplements हैं जो focus improve करते हैं
मैं जो use करता हूँ I use something called alpha GPC.
क्या होता है?
It's choline based. Alpha glyceryl phosphoryl choline, I think. So I use approximately 300 milligrams
every day.
Once a day. Sometimes I skip it क्योंकि long term usage is not recommended. तो जब भी आप कोई focused activity में अपना focus, clarity enhance करना चाहते हैं, cognitive ability enhance करना चाहते हैं, तभी आप इसका एक capsule ले सकते हैं.
Okay. और ये अपने डॉक्टर से बात करने के बाद लेना चाहिए लोगों की नो इट्स पीपल कैन टेक इट
इट्स अ फेयरली न्यूट्रल सप्लीमेंट इट्स देयर इज सम कोई एविडेंस है कि इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इफ टेकन फॉर टू लॉन्ग
मतलब कितना होता है
सालों भर
ओके
अनदर वेरी गुड रिसोर्स अगर किसी को भी चेक करना है कि कोई भी सप्लीमेंट से आपको कोई हानि पहुंच सकता है कि नहीं देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड examine.com
ओके
जहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ इंफॉर्मेशन फ्री मिल जाता है आपको अब वहाँ पे जाके आप कोई भी सप्लीमेंट का नाम टाइप कीजिए आपको पूरे डिटेल्स आ जाएंगे कि व्हाट इज द लेटेस्ट साइंटिफिक बैक्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सप्लीमेंट
नाइस सो कोई भी कंपनी की अगर ऐड आई है तो सबसे पहले examine.com में जाके
पहले examine.com में चेक कर लीजिए वहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस आप देख लीजिए उसके बाद आप डिसाइड कीजिए
तो अगर जो फोकस इन्हेंसिंग सप्लीमेंट लोग लेते हैं तो इससे जब सप्लीमेंट लेना बंद कर देंगे तो क्या रियल मतलब नॉर्मल ऑर्गेनिक में फर्क पड़ता है
कि
ब्रेन में भी बनाना ही बंद कर दे, एंड देन यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट।
बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफी सप्लीमेंट्स डिजीज में यूज होते हैं, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, रिटलिन, एडरॉल, ये सब ट्रेड नेम्स है, बट देर ऑल मोडाफिनिल, ये सब सप्लीमेंट्स है जो इंक्रीज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर्स इन द ब्रेन टू इंक्रीज फोकस, अवेयरनेस, क्लैरिटी, मोटिवेशन एक्सेट्रा। बट सब कुछ में एवरी सिंगल केमिकल हैज़ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, तो जितना भी हो सके वी शुड यूज इट इन मॉडरेशन।
ओके, एंड देन यू यूज इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर,
प्रेफरेबली, यस, ऑलवेज।
ओके, टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, हम स्लीप की बात कर रहे थे, तो मेलाटोनिन एक बहुत फेमस सप्लीमेंट बन चुका है
जी,
जो बहुत ओवर द काउंटर मिलता है, अमेजोन पर कहीं से बहुत ईजिली मिल जाता है
जी, हाँ, यस,
और लोग बहुत लेते भी हैं। क्या मेलाटोनिन के साइड इफेक्ट्स हैं? लॉन्ग टर्म
मेलाटोनिन साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, एक तो इट डिस्टर्ब्स जो एंडोजेनस मेलाटोनिन होता है ब्रेन में, इट अफेक्ट्स दैट। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के बारे में, एक स्टडी हुआ था जिसमें उन्होंने टॉप 20 ब्रांड्स ऑफ मेलाटोनिन, दिस हैज़ हैपेंड इन द US, उन्होंने कैप्सूल लेके एक्चुअली एस्टिमेट किया कि उनमें कितना मेलाटोनिन है, तो जो लेबल पे दिया गया था और एक्चुअल कंटेंट में बहुत डिफरेंस था,
ज्यादा था कम था,
कम या ज्यादा दोनों भी हो सकता है।
ओके,
तो आई वुड अवॉइड मेलाटोनिन एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड शॉर्ट टर्म, जब आपको जेट लैग हो रहा है, आप कोई नया जगह में गए हैं, तभी आपको लेना है टू गेट एडजस्टेड टू द डे नाइट साइकिल,
एक दो हफ्ते के लिए,
नॉट इवन एक दो हफ्ते, दो तीन दिन के लिए। आई वुड नॉट यूज इट, मैं ना प्रिस्क्राइब करता हूँ ना मैं खुद यूज करता हूँ।
लोग महीनों तक लेते हैं,
इट्स नॉट एडवाइजेबल, देर आर बेटर वेज, देर आर बेटर स्लीप सप्लीमेंट्स जिससे आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव हो सकता है।
जैसे
कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स विच आर वेरी सेफ, तो आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट, मैग्नीशियम ग्लाइसोनेट, जिसमें एलिमेंटल मैग्नीशियम शुड बी अराउंड 300-400 मिलीग्राम्स पर नाइट, वेरी सेफ। मसल क्रैम्प्स भी अगर आपको हो रहे रात को, दैट हेल्प्स। देर इज एपोजिन, थियोनिन, so many supplements which are beneficial for sleep. Ashwagandha also, which is a Indian supplement, helps for muscle recovery, sleep. In sare cheez is much safer than melatonin. I'll tell you my belief about medicine. First part of medicine was about treating things with potions, spells, doing some havan, something, you know, some evil spirit is occupying.
Yeah.
So that went off with scientific method.
Yeah.
Germ theory aa gaya. Germ theory means this disease is caused by this bacteria, this virus, this pathogen. So then we got antibiotics, we got antivirals. We solved that problem, more or less. Most of the infectious diseases are under control. We eradicated smallpox. We've almost eradicated polio. Now we are at the next step, where we have chronic lifestyle diseases, which are the biggest killer in the world now. What are they? Diabetes, high blood pressure, fatty liver disease, obesity, cancer. This is where preventive healthcare is the only way. And the other big thing, neurodegenerative disease, Alzheimer's, Parkinson's. There's no way to cure these diseases. You have to live with them.
True.
And you will die with them, off them. How do you prevent them from happening? That's the next
big space
that not only space, but is the next opportunity. It's what we should all be focusing on, about how we can improve our health span, not our lifespan.
Hum log baat kar rahe the about alcohol, smoking, and now I want to ask about weed. Weed, log bahut jaldi addict ho jate hain, and then jo weed स्मोक करने लग जाता है उसको बड़ा कामिंग फील होता है, वो बोलता है मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, मेरे को क्लैरिटी ज़्यादा है, ऐसा क्यों होता है? वीड से ब्रेन में क्या होता है?
वीड इज बेसिकली कंटेन्स एक साइको एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम है टेट्रोहाइड्रोकैनाबिनॉल, तो इट्स अ साइको एक्टिव सब्सटेंस, तो आप इट्स अ हेल्यूसिनोजन, तो आप हेल्यूसिनेट करते हैं बेसिकली।
बट लोग वीड इसलिए नहीं लेते कि उन्हें काम लगता है, उनकी लाइफ स्लो डाउन,
यू आर इन एन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, तो आप रियलिटी से हट जाते हैं, तो यू आर बेसिकली हेल्यूसिनेटिंग योर रियलिटी,
एंड ये एडिक्टिव होता है।
हाँ, डेफिनेटली एडिक्टिव होता है, एनी साइको एक्टिव सब्सटेंस, निकोटीन इज ऑल्सो साइको एक्टिव सब्सटेंस, एल्कोहल इज साइको एक्टिव, ये सब साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, दे गिव यू सम काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम रियलिटी।
वीड वालों से बात करो तो बोलते हो इट हेल्प मी काम डाउन, मेरी क्लैरिटी बढ़ जाती है, मैं सोच मैं क्रिएटिव ज़्यादा हो जाता हूँ, क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि मैं उसके आज अच्छे अच्छे आइडिया सोच पाता हूँ। सो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो कोई मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वीड के?
सो एक्चुअली स्पीकिंग वीड जो कैनबिस जो बोलते हैं,
हाँ,
इट हैज़ अ कॉम्पाउंड कॉल्ड कैनबिडियोल जो नॉन साइको एक्टिव पार्ट ऑफ द कॉम्पाउंड है, एंड जो टेट्रोहाइड्रोकैनाबिनॉल है जो साइको एक्टिव कॉम्पोनेंट है, इट्स एक्चुअली यूज्ड इन मेडिसिन इन स्मॉल डोजेस टू प्रिवेंट वॉमिटिंग। जैसे कोई कैंसर पेशेंट को जब कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर किया जाता है तभी उनको सिवियर वॉमिटिंग हो सकता है,
okay.
उसको कंट्रोल करने के लिए इट्स यूज्ड। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हर एक चीज़ के होते हैं। ईथाइल अल्कोहल ऑल्सो स्टेरिलाइजेज योर स्किन, तो इट डजंट मीन यू शुड बी इंजेस्टिंग इट। बट मेरे ख्याल से we don't have enough evidence to show long-term effects because cannabis का जो usage है recently ज़्यादा हो गया है,
अभी अभी बढ़ा
है, and we don't know इसके long-term effects क्या होने वाले हैं। हालांकि recently there has been another study from my favorite database called UK Biobank, जहाँ पे there's a belief के जो smokers हैं उनको cardiovascular risk, heart attack, stroke वगैरह ज़्यादा होता है, and weed में कुछ नहीं होता है। But now there's a recent study, which is one of the early studies, jisse nikla hai ke cannabis users, not sorry, it's not from the UK Biobank, it's from the US, jisme dikhaya hai ke weed smokers also have an increased risk of cardiovascular diseases. So we are blindly legalizing these things without knowing ke inke really long-term side effects kya hote hain. Jaise in the 50s and 60s, cigarette smoking was being advertised by doctors.
Why?
Because they didn't know that it was bad. They thought it would improve your lung capacity. If you look at the ads for certain cigarettes in the US in the 50s and 60s, doctors were advertising it.
What are you saying? I didn't know this.
Yes. You look at the ad for Camel cigarettes. And they say your doctor is smoking it, you should also be smoking it. We did not know that cigarettes were linked to lung cancer. It's only later that we got to know, and that's how the link came. And abhi, we very well aware that cigarettes have all these side effects and outcomes, and therefore we are more cautious. But we don't have that data on cannabis yet.
Cocaine ka consumption and usage bhi badh chuka hai in India specifically. Around the world, it was always there and bahut zyada badh raha tha. India mein in last 5 years, there was another research done by an independent, drug rehab center, some NGO, which was there on social media. I don't know what true hai ki nahi hai. But they said ki India mein cocaine ka usage year on year 200% badhte ja raha hai.
I'm not surprised.
You're not surprised?
No.
So you feel that's increasing?
I feel it probably is, yeah.
तो कोकेन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है, तो कोकेन में ऐसा क्या होता है, क्यों वो ज़्यादा अडिक्ट कर देता है लोगों को, वेर लोग पागल हो जाते हैं अगर उनको वो नहीं मिलता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग विच दे वॉन्ट इट अगेन एंड अगेन।
इट कम्स डाउन टू डोपामीन अगेन, इट्स अ वेरी पावरफुल डोपामीन एगोनिस्ट।
ओके, टेल मी स्टेप बाय स्टेप व्हाट हैपेंस, किसी ने कोकेन लिया क्या होता है उसके ब्रेन में?
सो यू इमीडिएटली गेट अ सर्ज ऑफ डोपामीन इन योर ब्रेन एंड यू फील ग्रेट, सो देन यू कीप लुकिंग फॉर दैट सेम फीलिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपने प्रीवियस डोज ऑफ कोकेन जो लिया था उसमें लेट अस से आपको 1x डोपामिन रिलीज मिला, 5-7 बार यूज़ करने के बाद आपको सेम डोज में 0.5x डोपामिन रिलीज मिलेगा, तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा कोकेन का टू गेट द 1x डोपामिन।
ओके,
दैट प्रोसेस विल गो ऑन, आप इनसेंसिटिव होते जाएंगे, डोपामिन का सेंसिटिविटी ब्रेन में इफेक्टिवनेस कम होते जाएगा, तो आपको डोपामीन 1x रिलीज करने के लिए आपका कोकेन डोज फ्रॉम फर्स्ट स्टार्टिंग डोज जो 1x था 10x हो जाएगा।
यानी कितनी जल्दी बढ़ता है?
डिपेंड करता है कि आप कितना कोकेन यूज़ करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और जब आपका डोपामीन डिप्लीट हो जाएगा तभी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ए मोटिवेशनल स्टेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डोपामीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन एंड ड्राइव, तो क्योंकि आपके ब्रेन में डोपामीन डिप्लीट हो जाएगा तो आप ए मोटिवेशनल स्टेट में आप पड़े रहेंगे, आपको कोई मोटिवेशन नहीं होगा कुछ करने के लिए, सो यू विल फॉरगेट अबाउट फूड, पर्सनल हाइजीन, सोशल कॉन्टैक्ट, everything at the cost of trying to get more dopamine in your brain. It's a very sad, serious situation.
Okay, talking about brain health and supplements, what are the brain foods to improve brain health? Like, what are the best foods?
Yeah, that's so generally, I don't like to talk too much about nutrition because it's such a difficult topic to make sense out of because there are too many variables to encounter. But generally, by and large, there are a few foods that are considered to be healthy for your brain.
Kaun se?
So vegetable and fruit sources are generally considered to be healthy.
Okay.
So omega-3, for example, which is present in fish and also in algae, if you're a vegan or a vegetarian. So omega-3 is very good for your brain.
Aur kisi mein hota hai vegetarian food mein? Algae ke alawa?
Flax seeds and all contain some amount of walnuts also. So, but not great quantities. So, ideally should supplement.
Mm-hmm.
Ideally. Then apart from that, there are various other chemicals which are present in certain foods, especially fruits and vegetables. So, the colored fruits, blueberries, blackberries, and antioxidants, which are present in colored fruits like oranges, apples, carrots, these sort of things. Very good for your brain. Vitamin E, vitamin C containing foods. Vitamin B12 is another very important vitamin for your brain health. So these are you should have a rainbow on your plate.
As very much as doctor possible. Line to say.
I'm sorry if I'm sounding like a cliche, but it is true. The more colors and the more variety you have on your plate, the better it is. So most people would say a Mediterranean diet, which is essentially a diet that's rich in fruits and vegetables and some amount of fatty fish, seafood, is considered very healthy for your brain.
In sabke beech mein na ek cheez humne baat kari thi. You said India mein preventive lifestyle diseases badhte ja rahi hai.
Not only India, all over the world.
All over the world. Tumhe dementia, Alzheimer's, Parkinson's, ye hoga hi hoga. Kya hota hai ye sab pehle ye batana?
Parkinson's is a dopamine related disease. So brain mein jab dopamine kam ho jata hai, to that causes in one area of the brain that causes difficulty in movement.
Matlab?
So because dopamine is the molecule of motivation, movement, action, so people freeze, they don't move, they become very slow.
Oh,
that's called bradykinesia.
Chalte hi nahi hai log.
They move very slowly, they shuffle. Aise. And the movements are very slow. They lose expression on the face. They say, haste hain, rote hain. We show expression on our face. They don't show.
Expressionless
ho jate hain. And they also start developing tremors.
Okay. So that is Parkinson's.
That is Parkinson's.
Alzheimer kya hota hai?
Alzheimer's is a neurodegenerative disease. This is related to the brain, but not my area of core competence because it's neuromedicine or neurology. But Alzheimer's is a condition where there is degeneration of neurons, particularly in the area of the brain called hippocampus, jahan pe memories are stored. So, jab memory loss ho jata hai, elderly logo mein aap dekhte hai na, ke wo bhool jate hain, they lose interest in self-care. It's a type of dementia. Jahan pe dementia matlab loss of brain function, especially higher brain function.
What?
Higher brain function matlab memory, reasoning, abstract thinking.
Logics bhool jate.
Correct.
To ab logic bhool gaye aur wo cheeze.
So they become more and more wo bhoolte rehte hain. First they lose jo recent events ke liye wo memory bhool jate hain. Jaise aap unko pooch lenge ki aapne subah mein nashta mein kya khaya, nahi bol payenge. But jo remote events hain jaise मेरे बचपन में 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, मैं कौन सा स्कूल गया था, मेरा घर का एड्रेस क्या था, वो सब याद रहेगा उनको. रीसेंट इवेंट्स वो भूल जाएंगे.
ये फर्स्ट स्टेज होती है,
अर्ली स्टेजेस में.
सो दिस इज वन स्पेस आई वांट टू नो मोर अबाउट ठीक डिमेंशिया, क्योंकि बहुत बढ़ जा रहा है ग्लोबली एंड इट्स ऑलमोस्ट अ थिंग वेयर पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड. लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये होना ही है एक सम स्टेज. बहुत सारे ग्रुप्स में तो बहुत वो है कि यू आर नेक्स्ट काइंड ऑफ वेरी लाइटली पीपल आर सेइंग नाउ. तो कोई तरीका है जिससे डिमेंशिया रोका जा सकता है? मतलब मेमोरी लॉस, जैसे लोग जो भूल जाते हैं, भूल जाने के बाद मतलब उनकी नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, तो फिर
कम्प्लीटली रोकना शायद अभी फ़िलहाल हमारे करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन वी कैन डिले इट और स्लो इट डाउन। तो इमेजिन के अगर लोग 100 साल तक जीते रहेंगे तो 100 साल में शायद 50-60% लोगों को डिमेंशिया हो ही जाएगा।
50-60% लोगों को, मतलब हर दूसरे इंसान को डिमेंशिया होगा
अगर 100 साल तक जी पाएंगे।
ओके
तो एज द एज इंक्रीजेज इंसिडेंस भी बढ़ते जाएगा, बट हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे वी कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया, या डिले कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। अगर डिमेंशिया हो रहा है तो उसको स्लो कर सकते हैं।
जैसे
कि जो मैंने बताया आपको, डाइट में कोई मॉडिफिकेशन, ईट हेल्थी फूड्स फॉर द ब्रेन, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में कोई हेल्थी ब्रेन फूड्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर फैटी फिश, तो अवॉइड टू मच ऑफ मीट, ट्राई टू फोकस मोर ऑन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फैटी फिश। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ग्लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में कि ये जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है, ये जो नॉन स्लो वेव डीप स्लीप में, नॉन REM स्लीप में ब्रेन के लिए एक मी टाइम होता है वो। ब्रेन हमेशा बॉडी के साथ मतलब बातचीत करते रहता है, तो इट्स कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स विद द बॉडी, ब्रेन नीड्स मी टाइम। तो नॉन REM स्लो वेव डीप स्लीप में होता है जब ब्रेन का डेब्री को क्लियर हो जाता है, तब ये जो एमिलॉइड प्रोटीन है जिसके वजह से वी बिलीव अल्जाइमर्स डिजीज शुरू हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम। तो अगर हम ठीक तरीके से सो पाएंगे हर रात 7-8 आवर्स, तुम्हारा ग्लिम्फैटिक सिस्टम के द्वारा ये सब क्लियर हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट्स, तुम्हारा ब्रेन हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। एरोबिक एक्सरसाइज, एनएरोबिक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। एरोबिक एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन। ऑक्सीजन डिलीवरी, ब्लड फ्लो, सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। एनएरोबिक एक्सरसाइज से क्या हो जाता है? वी गेट अ सब्सटेंस कॉल्ड BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिपोकैम्पल हेल्थ। हिपोकैम्पस इज द एरिया ऑफ द ब्रेन जिसमें मेमोरीज गेट सॉलिडिफाइड। तो BDNF जब रिलीज होता है, गेट्स रिलीज ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज।
तो हर हफ्ते लोगों को हाई इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस एंड कार्डियक एक्सरसाइजेस तीनों करनी चाहिए। ओके, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ब्रेन के, कि ब्रेन को ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़, आजकल कॉमन तो नहीं बोल सकता बट इन फ्यूअर सर्कल्स ये चीज़ कॉमन होते जा रही है, HBOT,
हाइपरबैरिक ऑक्सीजन।
हाँ, तो लोग एक मशीन में जाते हैं, 100% फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं और उसकी थेरेपी लेते हैं। डू यू थिंक इट्स गुड? पीपल शुड डू इट?
नो, आई डोंट थिंक इट्स गुड।
इट्स नॉट गुड?
या, बिकॉज टू मच ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैड। जस्ट बिकॉज समथिंग इज गुड फॉर अस इन स्मॉल क्वान्टिटीज, इट डजेंट मीन दैट मोर ऑफ इट इज बेटर। सो इवन फॉर एक्सरसाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड अ यू शेप्ड कर्व। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो इट्स अ यू शेप्ड कर्व।
तो ओवर एक्सरसाइज क्या होता है?
When you're doing too much exercise, high intensity without proper recovery, आप मौका नहीं दे रहे आपके बॉडी को रिकवर करने के, to harvest the benefit of exercise. So you're going to damage yourself. You're going to damage your end organs. You're going to cause more harm than good. Similarly, oxygen के साथ भी same problem. अगर आप ज़्यादा oxygen expose करते हैं आपके body पर, तो you get something known as free oxide radicals.
Free oxide radicals.
Free radicals. So basically, there are radicals that come from oxygen. These are hyperoxygenated species. Superoxides, hydrogen peroxide. These are all damaging to cells. Free radical damage ho jayega.
Okay.
So I would not advise taking hyperbaric oxygen unless it's really necessary. There are certain indications, medical indications, जहाँ पे यूज किया जाता है।
नॉर्मल लोगों को रिवर्स एजिंग, बायो हैकिंग, इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ के ले,
एविडेंस आई डोंट नो है कि नहीं है, डज इट रियली हेल्प और डज इट हर्ट, आई डोंट नो।
एयर प्यूरिफायर इज गुड?
या,
पीपल शुड डू इट? डज इट अफेक्ट एनी इन एनी वे ब्रेन हेल्थ?
नो, आई डोंट थिंक इट। आई डोंट थिंक, इनफैक्ट पोल्यूशन अफेक्ट्स ब्रेन हेल्थ.
कैसे, क्या?
बिकॉज दीज जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, दे कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम.
ओके.
एंड टेक्निकली दे कैन अफेक्ट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ब्रेन बिकॉज योर ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन.
तो हर जगह ऑफिस में अपने एयर प्योरीफायर्स लगा देना चाहिए लोगों को.
आई थिंक यस,
इट्स
आई थिंक इट विल definitely I don't know how else to tackle the problem of air pollution, but there are some studies from China. See, aajkal air pollution has become so ubiquitous. Sab jagah hai. Aap agar koi bhi city mein reh rahe hain to you are going to be exposed to air pollution.
Yeah.
So how do you counteract this? Up to a certain extent aap air purifier use kar payenge. Agar aapko bahar jana hai exercise karne ke liye, bhagne ke liye, cycling, daudne ke liye, to aap air pollution ko aap mask pehen ke to nahi kar sakte hain. So one of the studies from China, which I spoke about also, is use of broccoli and moringa sprouts. So what they found is if you use broccoli sprouts, they had two groups of people who were living in a very polluted part of China. And they gave one group broccoli sprouts. So that contains a chemical called sulforaphanes.
Okay.
So sulforaphanes are a chemical that takes away all the pollutants from the body and it gets released in the urine. So they found when they were giving broccoli sprouts that these people were excreting these compounds in the urine. So the harmful effects of air pollution were being negated by using broccoli and moringa sprouts. Now, how far this is true, is it proven, is it validated? I can't say, but aap try kar sakte hain.
I have last 4-5 in a ways. Questions which are more from the point of view that I have missed few fundamental questions during the discussion, right? One of the first question that I wanted to actually start the conversation with, kya logo ko apna, har kisi ko apna brain scan karana chahiye?
Nahin.
To know kya ho sakta hai, kya nahi ho sakta hai?
Nahin.
हर किसी को नहीं कराना चाहिए. बिकॉज ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने ना डॉक एमिन का पॉडकास्ट देखा था एंड ही सेज कि एवरीबडी शुड गेट देयर ब्रेन स्कैन्स डन, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो लोगों को नहीं पता है कितना वो प्रोन है फॉर सर्टन लेवल ऑफ ब्रेन.
डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्कैन फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप बात कर रहे हैं सीटी स्कैन, नो, बिकॉज जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जितना आपको रेडिएशन एक्सपोजर होगा, इट्स नॉट वर्थ इट इफ यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स.
ओके.
MRI scan, अगर आपको कोई symptoms नहीं है तो I would say 99% of the people who do MRI scan without symptom will be normal.
Okay.
So, you're going to spend a whole lot of time, money, effort, but nothing. No result. So, and you can't predict. अगर, depends on the age of the patient, depends on the, not patient, but person, depends on family history, depends on symptoms, इतने सारे factors.
Brain scan से पता क्या चलता है?
Structure of the brain.
That's it. और उससे कुछ और can you?
Lot of information can be gleaned from an MRI.
एक normal brain से अगर आप brain scan करते हो normal brain का जिसको कोई symptom नहीं है, उससे कुछ आप like can you find out something? उससे कुछ निकाल सकते हो आप कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या है?
वैसा नहीं पता चलेगा. Predictive capability नहीं है brain scan में, but you can say incidental findings कोई pick up हो सकता है.
जैसे
कि किसी को अगर छोटा ट्यूमर हो, aneurysm हो, या थ्रोम्बोसिस हो, कोई ब्लॉकेज हो, तो वो पिकअप हो सकता है. लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो क्वेश्चन आ जाता है कि हम उसको क्या करें, अभी ट्रीट करें या ना करें, क्योंकि इंसिडेंटल फाइंडिंग है. कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई पेशेंट को समझ लीजिए कि हेड इंजरी हो गया, एक्सीडेंट, तभी हम स्कैन करते हैं लोगों को देखने के लिए, तभी हम कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग पिकअप हो जाता है. तो देन व्हाट डू यू डू, उसको क्या करें, हम ट्रीट करें या ना करें, या ऑब्जर्व करें, या क्या करें, ऑपरेट करें या क्या करें?
क्या करते हो?
डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, साइज ऑफ द. अगर कोई समझ लीजिए किसी का ट्यूमर डिटेक्ट हो गया है स्कैन पे, तो हम फर्दर स्कैनिंग करते हैं, फर्दर डिटेल स्कैनिंग, कॉन्ट्रास्ट MRI, तब हमको पता चलता है कि ये एग्जैक्ट ट्यूमर टाइप क्या होने का संभावना है, कहाँ पे है, इसको निकालना चाहिए या इसको ऑब्जर्व करना चाहिए. फिर हम पेशेंट के साथ ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, फिर उनको डिसाइड करने देते हैं.
ओके.
कि हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको ऑब्जर्व करें या ऑपरेट करवाएं.
तो किसी को कभी बहुत स्लाइट, मैं बेड से गिर गया या मैं जो कभी लग गई, तो मेरे को इंटरनली कोई चोट लग गई या कोई ट्रॉमा हो गया फिजिकल डैमेज की फिजिकल इंजरी की वजह से, और वो मुझे पता नहीं चलेगा, एंड प्रॉब्ली एक या दो साल बाद उसकी वजह से मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम,
अनलाइकली, बहुत अनलाइकली,
ऐसे नहीं होता,
वेरी अनलाइकली,
राइट। सो फिर ब्रेन हैमरेज क्यों होता है?
ब्रेन हैमरेज अलग अलग टाइप के होते हैं,
क्योंकि आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ब्रेन हैमरेज होता है रिसेंटली हैपेंड विथ समबडी आई न्यू ऑफ एंड लाइक दैट पर्सन डाइड, कोई सिम्टम नहीं था, कोई स्ट्रोक नहीं आया, उसके दो दिन पहले वो पार्टी कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, सब एंड टू एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट।
डू यू नो द टाइप ऑफ ब्रेन हैमरेज?
नो, आई वाज जस्ट टेलिंग, आई ओनली नो ऑफ द सिचुएशन, आई डोंट नो, नथिंग वाज देयर, एंड देन उसके पेरेंट्स आज तक नहीं फाइंड आउट कर पाए कि मेन रीजन क्या था।
So brain hemorrhage in younger people
and they died, and then I don't want to take the name of the person or reveal the gender.
Patient privacy has to be
or reveal the gender or anything, just this way.
Brain hemorrhage can happen in younger ages also. There are some diseases jisme brain hemorrhage ho sakta hai. Some vascular malformations, say arteriovenous malformation, aneurysms. Aneurysm matlab it's a weak spot on the artery.
To ekdam se nahi hota brain hemorrhage.
एकदम से होता है, लेकिन जब एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है तब कोई सिम्टम नहीं होता है पेशेंट को।
तो कभी सिम्टम पता नहीं चलता है, तो कैसे लोग ब्रेन हैमरेज से बचें?
सो ब्रेन हैमरेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेज। एक तो हाई ब्लड प्रेशर, वेरी कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन हैमरेज। लोग अपना ब्लड प्रेशर कहाँ पे रेगुलरली चेक करते हैं? वेरी रेयर। ब्लड प्रेशर ठीक से क्लिनिक में भी कभी कभी हरी भरी में नहीं नापा जाता है, या ठीक तरीके से नहीं नापा जाता है। लोग अपना ब्लड टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कोई इतना रेगुलरली चेक नहीं करता है, खास करके जिनको बीपी का बीमारी नहीं है। तो अगर आपका बीपी हाई है, आपको कोई सिम्टम नहीं पता चलेगा। अचानक आपका बीपी अगर ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, तब अचानक से ब्लीडिंग हो सकता है, खास करके ब्रेन के डीपर स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पे मेमोरी, कॉन्शियसनेस, सब वहाँ से रेगुलेट होता है, तो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली बैंगलोर में एक डॉक्टर का डेथ हुआ था, ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज की वजह से,
और पता नहीं चला।
सो दैट इज़ वन कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज। एक और कॉज होता है एन्यूरिज्म ब्लीडिंग। एन्यूरिज्म ब्लीडिंग से जो ब्लड वेसल में एन्यूरिज्म मतलब एक वीक स्पॉट बन जाता है, जैसे एक बलून बन जाता है ब्लड वेसल में, तो अगर वो फट जाए तो ब्रेन में बहुत कैटास्ट्रोफिक हेमरेज हो सकता है, जिससे कोई कोई लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो सकता है। तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सस्पेक्ट कर सकते हैं जिनको बहुत फ्रीक्वेंट सिवियर हेडेक्स होते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री होता है एन्यूरिज्म का, तो उनमें हम थोड़ा सा अग्रेसिव स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि जापान में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट एन्यूरिज्मल ब्लीडिंग के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उनके पूरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को स्क्रीन किया जाता है एन्यूरिज्म के लिए।
सो ब्रेन ब्लीडिंग क्या होता है?
सेम थिंग, ब्रेन हेमरेज
द सेम वे। ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता किसको होगी, या कभी हो रही हो, या एसिम्प्टोमेटिक नहीं होती है?
एसिम्प्टोमेटिक बहुत रेयरली होता है। एल्डरली लोगों में सबड्यूरल हेमरेज होता है, जो एक अलग टाइप का ब्रेन हेमरेज होता है। ऑफ कोर्स हेड इंजरी के वजह से दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेज, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रॉमेटिक ब्रेन हेमरेज, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ट्रॉमेटिक।
सो ट्रॉमेटिक कैन पीपल, मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और उस टाइम पे तो सब नॉर्मल हो गए, उन्होंने फिजिकल चोट सब दिखा दी, और लेकिन इंटरनल उनको ब्रेन में कोई चोट लग गई।
कैन हैपन इट्स वेरी पॉसिबल, यस।
तो अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो गिरा हो, तो उस टाइम पे उसको ब्रेन स्कैन कराने चाहिए?
अगर उनको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ हो, या वॉमिटिंग हुआ हो, या सीजर्स हुए हो, या नाक या कान से ब्लीडिंग हुआ हो, तो डेफिनेटली ब्रेन स्कैन करना चाहिए। और अगर फर्स्ट ब्रेन स्कैन में अबनॉर्मैलिटी दिखाई दे रहा है, तो उनको एडमिट करके 6 घंटे के बाद दोबारा एक ब्रेन स्कैन करके देखना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमेटिक ब्रेन हेमरेज में एवोल्यूशन ऑफ हेमरेज हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, नए जगह में नया ब्रेन हेमरेज पैदा हो सकता है 6, 8, 12 घंटे के बाद।
एंड देन अगर आप सही टाइम पे, आपका एक्सीडेंट हुआ, भले आपको हाथ में बहुत थोड़ी सी चोट लगी हो, ब्रेन में इंटरनली लग गई, और आपने वो स्कैन करा, तो उसके बाद देयर आर चांसेस दैट दैट पर्सन कैन बी सेव्ड?
यस, डेफिनेटली।
ओके, एंड इफ दैट पर्सन डिडंट डू दिस टेस्ट, देन देयर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग?
डेफिनेटली। अवेयरनेस एंड अर्ली मैनेजमेंट एंड डिटेक्शन इज वेरी क्रूशल इन हेड इंजरीज.
ओके, लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस अगेन. चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मेंटल ट्रॉमास होते हैं, क्या उससे ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज हो सकती है?
When you say childhood trauma, मतलब actual physical trauma or
no, mental physical trauma? Trauma से तो you told me कि हो सकता है, right? Yeah. Physical trauma से अगर किसी को बचपन में इंजरी हुई जहाँ से कुछ एक ब्रेन के पार्ट में इंटरनली कोई अफेक्ट हो गया कोई पार्ट, तो फ्यूचर में जाके डेवलप होकर बड़ी इंजरी बन सकती है, ब्रेन रिलेटेड डिसीज हो सकती है. बट जो चाइल्डहुड मेंटल ट्रामा है, समबडी मे बी
इज बीन नेग्लेक्टेड, डोमेस्टिक इश्यूज,
डोमेस्टिक इश्यूज, कोई हाँ कोई चाइल्डहुड मेंटल ट्रॉमा है, किसी के साथ कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, किसी को मारा गया है, कोई डरता है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई अलोन है, कोई फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में, किसी ने फैमिली में घर में देखा है दस के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया, या मल्टीपल रीजंस, राइट? और बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास अफेक्ट कर सकते हैं, या किसी की बहुत अर्ली एज में किसी के मॉम या डैड या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो वो अफेक्ट कर गया. तो चाइल्डहुड जो मेंटल ट्रॉमास होते हैं उससे कोई ब्रेन रिलेटेड डिसीज हो सकती है इन फ्यूचर?
या बिहेवियरल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
न्यूरो इश्यूज,
एक्चुअल ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आई डोंट थिंक कैन हैपन.
ओके, सो बिहेवियरल जो हम बोल रहे थे साइकोलॉजिस्ट,
साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इश्यूज कैन अराइज.
ओके, एंड बट न्यूरोलॉजिकल जो न्यू व्हाट यू कॉल न्यू
न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जिकल,
न्यूरोसर्जिकल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज नहीं
हो सकते, आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट रिलेटेड.
Okay, you have not found anything as of now. Okay. You've touched the brain?
Many times.
Yes.
Thousands of times.
How does it feel like?
With a glove, of course. Yes, but of course, in dissection and in cadaver workshops, you can technically touch the brain without gloves. But ideally not.
कैसे होता है brain touch
करने में? It feels like a soft gelatinous structure.
मतलब? मतलब एक substance बताओ.
आपने jelly देखा है जो फ्रिज में सेट करते हैं ना? So it feels like that.
जेली जैसा?
हाँ.
ओके, एंड देन यू टच दैट ऑलमोस्ट एवरी डे?
वेल, वी डोंट टच इट विद आवर फिंगर्स, हम ग्लव्स पहनते हैं, देन वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑपरेट ऑन इट.
एंड जब ब्रेन सर्जरी करते हो तो उसमें होल करना पड़ता होगा हेड में, राइट?
जी.
कैसे होती है वो?
तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग ब्रेन सर्जरी. आजकल तो वी कैन डू मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी.
दैट्स योर एक्सपर्टीज,
वन ऑफ माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. सो जब हम ब्रेन में होल करते हैं तो स्कल में होल करना पड़ता है, तो इधर हम एक छोटा सा होल करके वही होल से हम ऑपरेशन कर सकते हैं विद एन एंडोस्कोप, विद अ माइक्रोस्कोप, वेरियस अदर डिवाइसेस. एक और हम जो होल्स बना के हम एक बड़ा सा पीस निकालते हैं, तो ब्रेन के बोन के नीचे एक कवरिंग होता है ब्रेन का, इसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, उसको खोल के, इट्स लाइक अ पर्दा, उसको खोल के फिर हम ऑपरेशन करते हैं, फिर उसको सिलाई करके बोन को वापस बिठाते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं विद मिनी प्लेट्स और विद सूचर्स.
सो स्कल काटना पड़ता है?
जी.
एंड
दैट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, कॉल्ड अ क्रेनियोटोम. तो इट कट्स द बोन.
सो यू सेड कि आजकल सिर्फ एक छोटे से होल से भी हो जाती है,
नाक से भी कर सकते हैं.
कैसे? एक छोटे से, अगर मेरे ब्रेन के अंदर कुछ सर्जरी आपको करनी है तो एक छोटे से होल से तो यू कैन जस्ट पुट इन प्रॉब्ली अ
एंडोस्कोप.
एंडोस्कोप तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, सर्जरी कैसे होती है?
एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जो एंडोस्कोप के अंदर में एक वर्किंग चैनल होता है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स डाल के ऑपरेशन कर सकते हैं
छोटे छोटे से,
एंड मैग्निफाइड व्यू होता है ना जब एंडोस्कोप हम डालते हैं. तो एंडोस्कोप इज बेसिकली अ लेंस जिसके एक एंड में कैमरा है. तो कैमरा बड़े से स्क्रीन पे हमको एक इमेज प्रोजेक्ट कर लेता है 4K में, तो वेरी डिटेल्ड क्लियर इमेज. और अब हम इंस्ट्रूमेंट्स एंडोस्कोप में डालते हैं तो हम वो स्क्रीन पे देख के हम ऑपरेट कर सकते हैं. इट्स लाइक अ वीडियो गेम.
प्लीज डोंट से थिंग्स लाइक दैट. ओके,
लाइक
डोंट वांट टू नो, माय डॉक्टर इज प्लेइंग वीडियो गेम इन माय ब्रेन.
द अदर थिंग इज वी कैन ऑपरेट नाक से भी.
ओके,
सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन, द स्कल बेस एस्पेशली. स्कल बेस मतलब जो ब्रेन और फेस के बीच में जो बोन रहता है, हम नाक से उसको एक्सेस कर सकते हैं विद एन एंडोस्कोप. दैट्स कॉल्ड एंडोनेजल सर्जरी.
हैव यू हर्ड ऑफ न्यूरालिंक? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे.
या आई हैव हर्ड ऑफ न्यूरालिंक.
आर यू एक्साइटेड अबाउट इट?
इट इज वेरी एक्साइटिंग इफ इट comes to fruition, matlab it becomes reality, to it will change the lives of so many people.
Can you tell people what Neuralink is and what's your
It's basically your a chip that is inserted into the brain, which enables people who have lost brain function to regain it.
So do you think it'll work very well?
If it they seem to suggest that it is going to work. If it works, it'll be miraculous.
But don't you think then bahut misuse ho sakta hai? Agar har insaan ke ya kuch insano ke dimag mein ek chip laga di, Neuralink naam ki, jisse wo उन्होंने जो जो फंक्शंस उनके ब्रेन के खो चुके हैं, मान लो कि मेमोरी लॉस होता है तो अब उनको नहीं होगा क्योंकि एक तरीके की चिप लग गई जो स्टोर करेगी डेटा. फिर कोई एक उनके बॉडी में एक फंक्शन है, जैसे उनके ब्रेन में एक नर्व है, वो डैमेज हो गई कि उनका हाथ नहीं मूव होता, तो वो उसे सही कर सकता है और वो हाथ भी मूव करा सकता है, राइट? तो ऐसे Neuralink बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो एक नॉर्मल थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो नॉर्मली अभी पॉसिबल नहीं है, और वो बहुत सारी ब्रेन डिसीजेस को रिवर्स करने की कोशिश करता है. लेकिन अगर हर इंसान के सर में ब्रेन लग वो Neuralink लग गई, एक चिप लग गई, तो उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है.
आई थिंक सो. हाँ, लाइक AI भी मिसयूज़ हो सकता है, ऐसे भी इट्स अ टाइप ऑफ AI आई गेस. तो वी हैव टू हैव रेगुलेशन ना, तो इसको मिसयूज़ ना होने देने के लिए वी शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल.
क्योंकि जो कंट्रोल करेगा या जो कंपनी बनाएगी उसके पास एंडलेस कंट्रोल है,
या
टू मेक यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग.
बट आई थिंक इफ इट इज यूज्ड विद द राइट मोटिवेशन एंड द राइट ऑब्जेक्टिव, तो इट विल चेंज पीपल्स लाइव्स.
थिंग्स ऑलवेज स्टार्ट विद राइट इंटेंशन. इट्स जस्ट सम पर्सन विद सम लेवल ऑफ इंटेंशन वन डे जस्ट टर्न्स अराउंड एंड बी लाइक, हे, मेबी इट वाज स्टार्टेड इन द राइट वे बट आई वांट इट दिस वे.
Yeah, that's regulation is important.
But have you seen any case kahan pe pahuncha Neuralink, kis stage par?
First case, I think, which they abhi report hua hai na.
Kya?
That they've been able to restore movement in a person.
Oh, they were able to do that?
They claim that, but we don't have any. Again, there is a something called scientific method. These are not things where we can just take one person's evidence or one particular case and say this is going to work on everyone. We have to have data which is controlled.
Thank you so much for telling me so many things. Mera dimag process nahi kar pa raha thi. But it was
I did not confuse you, but hopefully convinced you about certain things.
No, I got a lot of information. So it's just there are so many things that is difficult for me to process because itne sare words nahi seekhe, itni sari cheeze maine nahi seekhi. Thank you so much for doing this. It was a pleasure having you here, and thank you so much for giving us so much time.
It was my pleasure to be here, and I'm very grateful to you and your team for this opportunity. It was wonderful talking to you.
Thank you so much.
Thank you.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में फीडबैक दीजिए और बताइए कि कैसा आपको ये एपिसोड लगा, ताकि आपके कॉमेंट्स और फीडबैक पढ़ के मैं अगला एपिसोड और बेहतर तरीके से बना सकूं. आपके कॉमेंट्स मैं बहुत ज़्यादा रिगरसली पढ़ता हूं, क्योंकि उसी से हम आज तक यहां पहुंचे हैं और इसी तरीके से हम आगे भी जाएंगे, एंड आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट पॉडकास्ट इसे बना कर ही रहेंगे. बिफोर यू लीव, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कर लो, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ एंड दैट कैन ऐड टू कंट्रीज ग्रोथ टू अनदर लेवल. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर, एंड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.